मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 29 अगस्त 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपसे सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। सर्विस सेक्टर जिसे आप तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तृतीयक क्षेत्र यानी कि तीसरा क्षेत्र, इसका मतलब है कि दो क्षेत्र और भी इससे पहले कुछ रहे होंगे। तो जो पहला क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था की शुरुआत इस कृषि क्षेत्र से ही हुई थी। इसके बाद फिर हमने औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ये जो तीसरा क्षेत्र है ये सेवा क्षेत्र है, जो आखिरी क्षेत्र है। अब देखते हैं कि आगे और कौन सा नया क्षेत्र डेवलप होगा। हालांकि एक नया क्षेत्र कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा, आईटी सेक्टर, लेकिन अभी उसे सेवा क्षेत्र में ही मानकर चला जा रहा है। खासकर मैंने इस विषय को चुनने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अक्सर सेवा क्षेत्र के बारे में आपको अखबारों में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को ये समझ में ना आता हो कि इनफैक्ट ये है क्या, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। और अखबारों में आपको ज़्यादा पढ़ने को इसलिए भी मिलता है क्योंकि भारत के लिए यह सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा जो टोटल जीडीपी है, सोचिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें तो 56% सेवा क्षेत्र का योगदान है। एक क्षेत्र है और 56%, इसके आप महत्व को समझ सकते हैं। जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें इसका योगदान है 20%, केवल एक छोटे से सेक्टर का 20%। और जो विदेशों से हमें निवेश प्राप्त मिलता है डायरेक्ट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो हमें जो टोटल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलता है उसका 50% केवल इस सेक्टर को मिलता है। मतलब सेवा क्षेत्र 50% विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है। इतने बड़े सेक्टर में जो हमारी पॉपुलेशन है उसका केवल 27% लगा हुआ है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखिए कि लोग इसमें काम कर रहे हैं 27% और जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 56%। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है अन्य क्षेत्रों में लगे हुए लोगों से बेहतर है। और भारत में लगातार ये जो सेवा का क्षेत्र है बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए भारत सरकार की भी नीति कुछ इस तरीके की होती है कि कैसे हम इस सर्विस सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो इनफैक्ट वो होती क्या है, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप लोगों को मालूम होगा कि सेवा क्षेत्र क्या है, लेकिन फिर भी चलिए एक लेक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल बनाने के लिए मैं इशारे के तौर पर कुछ सेवाएं आपको बता देता हूं। देखिए, शब्द ही है सेवा, इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप किसी को कोई चीज नहीं दे रहे हैं। चीज देने का काम कहां होता है, या तो कृषि क्षेत्र में कि आप अनाज पैदा करके दे देते हैं, या इंडस्ट्री सेक्टर में कि आप चीजें बना रहे हैं, बाल्टी बना रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ी बना रहे हैं और बनाने के बाद उसे दे दे रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन ये जो सेवा क्षेत्र है ये कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता है लेकिन इसकी जरूरत बहुत है, जरूरत बहुत है। ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो दिखाई नहीं देती, जिसे आप थैला में भरकर ले जा नहीं सकते, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आप पर्यटन के लिए आए हुए हैं, ठीक है, तो पर्यटन में आप देखें कि गाइड आपके पास है, आप होटल में रुक रहे हैं, तो अब जब होटल में रुक रहे हैं तो होटल वाला आपको कुछ दे नहीं रहा है। आप कह सकते हैं कि कमरा है, कमरा तो सेवा प्रोवाइड करने के लिए है ना, वो कमरा तो आपको नहीं दे रहा है। और जो आपको कमरा बना करके देते हैं तो वो विनिर्माण का क्षेत्र हो जाता है, वो उद्योग का क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। तो जब ये होटल बना था, देखिए तब ये होटल क्या किस सेक्टर में था, विनिर्माण क्षेत्र में, यानी कि ये उद्योग क्षेत्र में था। होटल बनने में जो कुछ भी लगा, जो भी हमारी इनकम हो हुई, वो उद्योग क्षेत्र को हुई। अब होटल बन के तैयार हो गया, अब ये होटल वाला कर क्या रहा है, ये जो पर्यटक है या वैसे भी जो लोग आ रहे हैं उनको सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। किस चीज की सेवा, रुकने की सेवा, आप जाइए किराया दीजिए रुकिए और जो जो सामान आप लेकर के आए थे वही सामान लेकर के आप चले जाइए। वो आपको क्या देता है, आप उसे 2,000-4,000 रुपए किराया दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में वो आपको कुछ भी नहीं देगा। जो देना था वो दे दिया कि भैया ये कमरा है आपके पास, आप इसमें रहिए। तो इसे हम कहते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करना। डॉक्टर आपको क्या देता है, कुछ नहीं, पर्ची लिख दिया, अपनी फीस ले ली। आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो क्या देते हैं, वकील क्या देते हैं, आपको सेवाएं ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आपके बिहाफ पर वो कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं, आपको दे कुछ भी नहीं रहे, लेकिन वो आपकी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स इसके तहत आते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, यहां तक कि भंडारण, जो आपको स्टोरेज हाउस दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े वेयर हाउस दिखाई देते हैं, ये भी इसी के तहत है। मैं खासकर कुछ ऐसे नाम आपको बता रहा हूं जो आपके कृषि क्षेत्र से, और यूं कह लीजिए कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं, और मैं स्पेशली इसलिए यहां मेंशन कर रहा हूं ताकि आप उसके अंतर को समझ सके कि ये सेवा प्रोवाइड कर रहा है या इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। संचार, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन, और पूरा का पूरा आप कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितनी भी है, ये सब के सब जिसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन आपको कोई डॉक्टर बना दे रहा है, कोई इंजीनियर बना दे रहा है, आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है, आपको एक इनविजिबल चीज दी जा रही है, शिक्षा जो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप एक सामान्य से व्यक्ति से पता लगा कि डॉक्टर बन जाते हैं। शिक्षा है, मेडिकल है जिसे आप चिकित्सा कह लीजिए, एडवाइज है, या संस्कृति का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, मनोरंजन है। अभी मनोरंजन उद्योग कितना बड़ा उद्योग हिंदुस्तान का है, सोचिए, आप फिल्मों को आप देखिए। पर्यटन है जिसकी चर्चा मैंने आपकी, जो फाइनेंस है, बीमा है, इंश्योरेंस, बैंकिंग है, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज ही मैं कह रहा हूँ सेवा क्षेत्र में आती है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी एक विस्तृत जानकारी, या कह लीजिए कि अवधारणा आपकी बनी होगी कि इनफैक्ट सर्विस सेक्टर होता क्या है। अब आप देखिए, तो भारत के संदर्भ में अगर लें तो आप कह सकते हैं कि यह क्षेत्र भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है, सबसे तेजी से। आप कह सकते हैं कि वर्तमान में तो ये हमारे आर्थिक विकास का एक प्रकार से इंजन हो गया है। ये इसको प्रूफ कर सकते हैं आप एक उदाहरण के जरिए कि सन 2008-09 में अमेरिका से आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में अब हम भारत में भी कहने लगे कि आर्थिक मंदी आने की आहट मिल रही है। इसके बाद ये यूरोप के भी कई देशों में ये फैल गई थी आर्थिक मंदी, और लोग बहुत घबरा रहे थे, और काफी बड़ी मंदी थी, अमेरिका की स्थिति तो बहुत खराब हो गई थी। 2008-09 में जब अमेरिका और यूरोप आर्थिक मंदी के चपेट में थे, उस समय भारत में आर्थिक मंदी ने उतना ज्यादा डैमेज नहीं किया। क्यों? तो कहा जाता है कि उसका एक बहुत बड़ा कारण था सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र ने, इनफैक्ट सच पूछे तो, भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को खड़ा रखा। फिर आप देखिए कि जो सेवा क्षेत्र है, अगर हम इंडस्ट्री को लें तो इंडस्ट्री के लिए ये कितना मददगार है, कृषि क्षेत्र में मददगार है, यहां तक कि जो मार्केटिंग के क्षेत्र में देखिए आप, ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे आजकल होने लगी, तो मार्केटिंग में सर्विसेज ही प्रोवाइड किया जा रहा है ना, चाहे वो सूचना टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। और फिर जैसे जैसे हमारे देश की आय बढ़ती जा रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे आप देखिए कि मध्यम वर्गीय जो समाज था उसकी भी चेतना में परिवर्तन हो रहा है। पहले तो वो जो थोड़ा बहुत भी कमाता था उसको अपने पास जमा करने में भरोसा करता था, अब वो जमा रखने में भरोसा नहीं करता, उसका विश्वास नहीं है, वो कह उसे लगता है कि यार ये खर्च करने के लिए है। तो पर्यटन पर खूब जाने लगे हैं, गाड़ियां खरीदने लगे हैं, हेल्थ पर ध्यान देने लगे हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे हैं। तो इसके कारण जो सेवा क्षेत्र है उसको बूस्ट मिलेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा आप यूं कह लीजिए कि प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, धीरे 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 भारत में सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक बात और है जिसकी चर्चा मैं यहां खास करना चाहूंगा, वो ये कि भारत में ये जो सेवा का क्षेत्र बढ़ा है, एक बात कही जाती है कि सामान्यतया जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो पहले क्या होता है कि कृषि क्षेत्र, इसके बाद उद्योग क्षेत्र, और इसके बाद सेवा का क्षेत्र, ये तीन माने गए हैं। लेकिन भारत में कुछ विचित्र ही स्थिति है। अब देखिए, कृषि क्षेत्र तो हमारा बहुत कम हो गया है, मतलब आप सोचिए कि 1950 में, एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, बल्कि अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो आपके काम आ सकता है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 54% था। इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था, मोर देन हाफ, 54%। आज वो घट करके केवल 16% रह गया, कहीं कहीं आपको 15% भी पढ़ने को मिल सकता है, 54 से घट करके 16%। और जीडीपी में जो इंडस्ट्री का योगदान था 1950 का, वो 12% था, मात्र 12%, वो अब बढ़कर 30% हो गया। मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन जो सेवा क्षेत्र का योगदान 1950 में हमारे जीडीपी में 34% था, वो अब बढ़कर के 54% हो गया। मतलब सेवा क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कृषि से सेवा क्षेत्र में छलांग लगा दी, यानी कि उसने औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर के सीधे जंप करके वो सर्विस सेक्टर में पहुंच गया। तो लोग इस पर विचार करते हैं कि भारत में ऐसा क्यों हुआ, तो दोस्तों उसके कुछ कारण मैं आपको सामान्य तौर पर बता देता हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। देखिए, उद्योगों के लिए क्या होता है, इंडस्ट्री के लिए कुछ बहुत जरूरी चीजें होती हैं जिसे आप कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के घटक। अब उनके बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते। आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपको जमीन चाहिए, परिवहन की सुविधा चाहिए ताकि कच्चा माल आ सके और बने बनाए माल को आप बाहर भेज सकें, आपको सस्ती बिजली चाहिए, और सस्ती बिजली ही नहीं चाहिए बल्कि हर समय बिजली चाहिए, जो आपके श्रम कानून हों वो भी थोड़े से सरल किस्म के हों, जो टैक्सेशन सिस्टम है वो भी सिंपल हों, फिर आपको सरकार से उसके लिए परमिशन लेना है, पर्यावरण के लिए, वन के लिए, जल के लिए, पता नहीं कितने सारे आपको परमिशंस लेने पड़ेंगे, फिर आपको कैपिटल भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए। तो एक उद्योग लगाने के लिए आपको इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, आप देखिए कि अगर आप सरकारी परमिशन लेने के चक्कर में पड़े तो पता नहीं कितने साल आपको लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स थे ये उद्योग से जुड़े हुए थे जो आसान नहीं थे। सेवा क्षेत्र के साथ क्या है, सेवा क्षेत्र के साथ ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। अब आप देखिए कि आपको मान लीजिए स्लेट का कारखाना लगा, स्लेट पेंसिल जो लिखने वाला होता है, या कह लीजिए पेन का ही कारखाना लगाना है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है, तो आपको कितने सारे काम करने पड़ेंगे। और सपोज आपको एक स्कूल खोलना है, स्कूल खोलने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जो बोर्ड है वहां से या CBSE से परमिशन ले लीजिए, और परमिशन आपको मिल जाएगी, एक कमरा ले लीजिए वो भी किराए से ले लीजिए और पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपको कोई किसी पूंजी की जरूरत नहीं है, और आपका स्कूल शुरू हो गया। तो ये स्कूल क्या हुआ, स्कूल सेवा से क्षेत्र हुआ। लेकिन अगर आप पेन की का कारखाना खोलना चाह रहे हैं या स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना खोलना चाह रहे हैं तो वो क्या हुआ, इंडस्ट्री हो गई। तो इंडस्ट्री के संकट को आप ऐसे समझ लीजिए, और सर्विस सेक्टर की सरलता और सहजता को आप ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इंडस्ट्री लगाना भारत में थोड़ा सा एक कठिन काम हो गया था, तो लोगों ने सेवा के क्षेत्र में जाना शुरू किया, पहली बात। और 1990-91 के बाद जैसे ही उदारीकरण की शुरुआत हुई, अब भारत की डिमांड पूरी दुनिया में होने लगी, क्योंकि सेवा यहां तो जो सर्विसेज हैं वो बहुत सस्ती हैं, और साथ ही साथ फिर ये इंटरनेट और कंप्यूटर और ये सब, इन क्षेत्रों में क्रांति होने के कारण आप कहीं भी बैठे हुए सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक तरीके से वरदान जैसा हो गया। ये सब कारण रहे कि भारत ने सीधे आप कह लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर में जंप लगाया। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको सेवा क्षेत्र के बारे में बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि इससे एक सामान्य किस्म की अवधारणा जरूर आपके दिमाग में बन गई होगी। तो इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।